जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ गौरानिताय 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 श्री श्री गौरानिताय 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 श्री श्री गौरानिता जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद Jaya Prabhupada, 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 Shri Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Shri Prabhupada. Nitai Gaur Ribol, 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 Gaur Ribol. Nitai Gaur Ribol, Haribol, Ribol, Gaur Ribol. Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada Guru Puja ki. Sri Guru Charana Paduma Kevala Bhakti Sharma Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Mandamoye Savadhana Mate नंदमुए सावधान मत वंदम प्रसाद भे भवता प्रसाद भे भवता रे कृष्ण प्राप्ति है ते कृष्ण प्राप्ति कृष्ण प्राप्ति है ते कृष्ण प्राप्ति गुरुमुख पद्मवक्या चित्त करिया गुरुमुख गुरुमुख पद्मवक्या चित्त करिया गुरुमुख पद्मवक्त आर न करी हमने आशा न करी हमने आशा न करे गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति गुरु श्री गुरु चरण रति से उत्तम गति श्री गुरु चरण रति से ये प्रसाद पूरे सर्व ये प्रसाद ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद चक्षुदान दिलो रे जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिलो रे जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान नित प्रकाशित दिव्य ज्ञान नित प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ हेते अविद्या विनाशयते प्रेम भक्ति यहाँ हेते अविद्या विनाशयते वेद गाय हर चरिता वेद गाय हर चरिता ശ്രീഗുരു കരുണാസിന്ധോ വദനജാലാരബന്ധോ ശ്രീഗുരു കരുണാസിന്ധോ വദനജാലാരബന്ധോ ലോകനാഥ ലോകരാജീവാന ലോകനാഥ ലോകരാജീവാന പ്രഭു കരുദയാ പദ ഛായാ ഹമരെ പദ ഛായാ പ്രഭു കരു ദയാ ഹമരെ പദ ഛായാ ഭയാ സുഖ ഭുവാന പ്രഭു പാത പവന ജയ പ്രഭു പദ ജയ പ്രഭു പദ പ്രഭു പദ ശ്രീ പ്രഭു പദ പ്രഭു 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 ശ്രീ പ്രഭു ജയ ജയ പ്രഭു 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 ശ്രീ പ്രഭു ജയഗൗരി പ്രേമനന്ദേ നമഃ വിഷ്ണു പദായ കൃഷ്ണ പ്രസായ ഭൂതലെ ശ്രീമത് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണിത ചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേഷ്ടാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഗദാധര ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവസാദി ഭക്തവൃന്ദ Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adaita Gadadhar Shiva Sadi Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रज का चार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव नंद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस प्रिवराज का चार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज शिल प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त रंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गंगा माई यमुना माई की जय। श्री श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा राधिक रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज जी श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौर। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय।
कृपया सब साथ साथ बोलेंगे। हमारे श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल ही एकमात्र साधन हैं जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। ये श्री गुरुपाद करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। ये श्री गुरुपाद मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभात की।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन जारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतं स्कंद 8 अध्याय 7 श्लोक संख्या 12 से लेकर 19 तक श्लोक संख्या 19 बोर्ड पे है। अध्याय का शीर्षक है शिवजी द्वारा विष्पान से ब्रह्मांड की रक्षा। तो श्लोक संख्या 12 से 18 तक हम केवल अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद फिर श्लोक संख्या 19 का उच्चारण करेंगे।
तब मंदिर पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया जो अन्य विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे और एक हाथ से मंदिर पर्वत को पकड़े रखा। तब ब्रह्मा शिव इंद्र तथा अन्य देवताओं ने उच्च लोकों में भगवान की स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। श्लोक संख्या 13। देवता तथा असुर अमृत के लिए मानो मतवाले होकर कार्य कर रहे थे क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित कर रखा था। वे पर्वत के ऊपर और नीचे सभी जगह थे और वे देवताओं असुरों वास्तुकी तथा पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए थे। देवताओं तथा असुरों के बल से क्षीर सागर इतनी शक्ति के साथ विलोडित हो रहा था कि जल के सारे मगरमच्छ अत्यधिक विचलित हो उठे, तो भी समुद्र का मंथन इस तरह चलता रहा। वासुकी के हजारों नेत्र तथा मुख थे, उसके मुख से धुआं तथा अग्नि की लपटें निकल रही थी जिसे पौलोम कालेय बलि इलवल आदि असुरगण पीड़ित हो रहे थे। इस तरह सारे असुर जो जंगल की आग से जले हुए सरल वृक्ष की भांति प्रतीत हो रहे थे धीरे धीरे शक्तिहीन होते गए। क्योंकि वासुकी की दहकती सांस से देवता भी प्रभावित हुए थे, अतएव उनकी शारीरिक कांति घट गई और उनके वस्त्र, मालाएं, आयुध तथा उनके मुखमंडल धुएं से काले पड़ गए, किंतु भगवत कृपा से समुद्र के ऊपर बादल प्रकट हो गए और वे मूसलाधार वर्षा करने लगे। समुद्री लहरों से जल के कण लेकर मंद समीर बहने लगे, जिससे देवताओं को राहत मिल सके। जब श्रेष्ठतम देवताओं तथा असुरों के द्वारा इतना उद्यम करने पर भी क्षीर सागर से अमृत नहीं निकला, तो स्वयं भगवान अजित ने समुद्र को मथना प्रारंभ किया। भगवान श्याम बादल की भांति दिख रहे थे। वे पीले वस्त्र पहने थे, उनके कान के कुंडल बिजली की तरह चमक रहे थे और उनके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वे फूलों की माला पहने थे और उनकी आंखें गुलाबी थीं। विश्वभर में अभय देने वाली अपनी बलिष्ठ यशस्वी भुजाओं से उन्होंने वासुकी को पकड़ लिया और वे मंदर पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब वे इस प्रकार व्यस्त थे तो वे इंद्रनील नामक सुंदर पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे थे। मछलियां, हांगर, कछुए तथा सर्प अत्यंत विचलित एवं क्षुब्ध थे। सारा समुद्र उत्तेजित हो उठा और व्हेल, समुद्री हाथी, घड़ियाल तथा तिमिंगल मछली जैसे बड़े बड़े जलचर सतह पर आ गए। जब इस प्रकार से समुद्र मंथन हो रहा था तो इस सर्वप्रथम हालाहल नामक घातक विष उत्पन्न हुआ। अब श्लोक संख्या 19।
तदुग्र वेगम दिशि दिशि उपरि अधो विसर्पदुस्सर्पदसयम् अप्रति भीताः प्रजा दुद्रुभुरङ्गसेश्वरा अरक्ष्यमानाः शरणं सदाशिवम्। हरे कृष्ण। तत् वह उग्र वेगम अत्यंत भयानक तथा तेज विष, दिशि दिशि सभी दिशाओं में, ऊपरी ऊपर, आधा नीचे, विसर्पद मुड़ता हुआ, उस सर्पद ऊपर जाते हुए, असयम असह अप्रति वश में ना होने वाला, भीता अत्यधिक डरे हुए, प्रजा सारे विश्वों के निवासी, बुद्रभु इधर उधर जा रहे थे। अंग हे महाराज परीक्षित, स ईश्वर भगवान सहित अरक्षमाण असुरक्षित शरणम शरण सदाशिवम, शिवजी के चरण कमलों में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे राजन, जब वह उग्र विष ऊपर नीचे तथा सभी दिशाओं के वेग के साथ फैलने लगा तो सारे देवता भगवान समेत शिवजी सदाशिव के पास गए। अपने को असुरक्षित तथा अत्यंत भयभीत पाकर वह सब उनकी शरण मांगने लगे। कोई चाहे तो ये प्रश्न कर सकता है कि जब साक्षात भगवान वहां उपस्थित थे तो वे सारे देवताओं तथा प्रजा को साथ लेकर सदाशिव की शरण में क्यों गए? उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इस प्रसंग में श्रीला मध्वाचार्य सावधान करते हैं, रुद्रस्य यशसो अर्थाय स्वयं विष्णुर्विषम विभुः न संजहे समर्थोपि वायुं चो चे प्रशांत है। भगवान विष्णु स्थिति को संभालने में सक्षम थे, किंतु शिव जी को श्रेय प्रदान करने के लिए ही उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। शिव जी ने बाद में सारा विष पी लिया और उसे अपने गले में रख लिया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राजन, जब है उग्र विष ऊपर नीचे तथा सभी दिशाओं के वेग के साथ फैलने लगा तो सारे देवता भगवान समेत शिव जी सदा शिव के पास गए। अपने को असुरक्षित तथा अत्यंत भयभीत पाकर वे सब उनकी शरण मांगने लगे। तो ये भागवत का 8वां स्कंद है और इस अध्याय का शीर्षक है शिवजी द्वारा विष्पान से ब्रह्मांड की रक्षा। तो भागवत के कई विषय हैं, 10 विषय हैं। पुराणों में 10 विषय होते हैं, उपनिषदों में 5 विषय होते हैं जो मुख्य विषय होते हैं। जैसे भागवत गीता में 5 मुख्य विषय हैं और पुराणों में 10 विषय पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे 10 विषय बताए गए हैं जिसकी चर्चा अभी यहां नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से एक विषय है पोषण। भगवान पोषण करते हैं यानी कि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं। तो देवतागण भी भगवान के भक्त हैं। कई बार ऐसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न परीक्षित महाराज ने भी किया। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के प्रारंभ ही सुखदेव गोस्वामी से पूछा था उन्होंने कि क्या कारण है, देखने में ऐसा लगता है कि आप पक्षपात करते हैं, भगवान पक्षपात करते हैं, ऐसा लगता है कि देवताओं का पक्ष लेते हैं हमेशा भगवान। और इसी कारण से उन्होंने भगवान नरसिंहदेव की कथा सुनाई थी परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी ने। कहने का मतलब यह है कि भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। महाभारत में भी कई स्थानों में ऐसा नजर आता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि भगवान जो है वो पांडवों के पक्ष में है। और कई स्थानों में भी, यहां तक कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही गए द्वारका, गए अभी द्वारका होके आ रहे हैं, जैसे रुक्मिणी कृष्ण उन्होंने अपना नाम सार्थक कर दिया आज, तो द्वारका में भी हम देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने जो है अर्जुन को ही अर्जुन का साथ दिया। भले वो कह लें कि मैंने तो सबसे पहले अर्जुन को देखा था, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। तो ये स्पष्ट है भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक राजा प्रजा की रक्षा करता है, लेकिन सबसे पहला ध्यान उसका अपने परिवार के सदस्यों के लिए होता है। और दूसरी बात यह है कि सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, मलमूत्र के लिए भी है। सूर्य का प्रकाश मलमूत्र को भी पवित्र करता है। तो भगवान की कृपा सबके लिए है, लेकिन कृपा के पात्र कौन है देखना पड़ेगा। किसके पास पात्र है भी, उस पात्र में बहुत सारे छिद्र है, सारा जल निकल जाता है। वर्षा ऋतु का जल बहुत ही पवित्र है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है और यह जल बहुत पवित्र है। इस पृथ्वी के संपर्क में जैसा ही यह जल आता है तो दूषित हो जाता है, लेकिन जब आकाश से गिरता है तो बहुत पवित्र होता है। और ये वर्षा का जल जब गिरता है तो बड़ा ही पवित्र है, लेकिन पृथ्वी के संपर्क में आते हुए दूषित हो जाता है। सूर्य की रोशनी सबके लिए है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, लेकिन उस वर्षा ऋतु में जल को ग्रहण करें ऐसे पात्र में कि जिस पात्र में छिद्र ही छिद्र है, तो उसमें उस जल का क्या दोष, या फिर आपके पात्र में बहुत मिट्टी है, गंदा है आपका पात्र, तो फिर उस वर्षा ऋतु का जो जल है उसका क्या दोष। इसी तरह से भगवान भी समदर्शी हैं, देवताओं को पक्ष लेते हैं क्योंकि देवता भगवान के भक्त हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। देवताओं से भी गलती होती है, इंद्र से गलती होती है, देवता बहुत सारी गलतियां वो भी करते हैं, लेकिन देवताओं में एक खूबी है, जब उनको सुधारा जाता है भगवान के द्वारा तो सुधर जाते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं। असुर गलती करते हैं लेकिन गलती ही करते रहते हैं, वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, तो इस कारण से भगवान को फिर भक्तों का या देवताओं का पक्ष लेना पड़ता है। और यहां पर भी हम यही देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर लीला है जिसमें बहुत सारे अवतार एक साथ हो गए, एक ही लीला में है कितने सारे अवतार भगवान ने एक साथ ले लिए, नहीं, मंदरा पर्वत को धारण करने के लिए भगवान ने कुरुमुरु का अवतार लिया है, भगवान अजीत के रूप में प्रकट हुए हैं, ये जो असुर है और देवतागण है मंदरा पर्वत को मंथन की छड़ी बनाते हुए मंथन कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है समुद्र से, सागर से कुछ निकल नहीं रहा है, तो भगवान को वहां पे भी सहायता करनी पड़ी। भगवान हर जगह सहायता कर रहे हैं। दुर्वासा मुनि ने शाप दे दिया, दुर्वासा मुनि को क्रोध बहुत आता है, लेकिन क्रोध का बहुत लाभ भी मिलता है, देव ऋषि यानी कि नारद जी और ऐसे कई ऋषि मुनि जो शाप देते हैं, उस शाप का बड़ा लाभ है, कृपा है उनकी, है ना। तो दुर्वासा मुनि ने शाप दिया इंद्र को, देवताओं को, इंद्र को अहंकार हो जाता है, स्वाभाविक है, जन्म ऐश्वर्य सुतर श्री भीर एद माला मदपवान, कुंती महारानी कह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंटॉक्सिकेशन है वहां पर, मद है इस पृथ्वी में। संसार में भी देखते हैं कि जब ये सब होता है, ये योग्यताएं होती हैं, अच्छे कुल में कोई जन्म लेता है, बहुत अधिक धन होता है किसी के पास विद्वत्ता होती है, सुंदरता होती है, तो ये सब ऐश्वर्य है, ये सब आकर्षण है इस संसार में। जिसके पास भी ये है भौतिक दृष्टि से, ये बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ा गुण है और हमें बहुत अच्छी तरह से इस संसार में बांध के रखता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुतर श्री भी मदोन्मत हो जाता है व्यक्ति, नशे में आ जाता है और भूल जाता है अपने अस्तित्व को, और भूल जाता है कि सामने कौन है, अपने आचरण को भूल जाता है, अपने व्यवहार को भूल जाता है। इंद्र भी इसी तरह से भूल गए, ऐरावत हाथी के ऊपर बैठे हैं, दुर्वासा मुनि कृपा करके उनको माल्यार्पण करना चाहते हैं, अपनी माला उन्होंने गले से निकाल के इंद्र को दी, हाथी ने अपने सूंड के सहारे इंद्र तक वो माला पहुंचा दी, इंद्र ने उस माला को ठीक से स्वीकार न करके वापस उस हाथी को दे दिया, उसके सूंड में उस माला को रख दिया हाथी के सूंड में, और हाथी को क्या पता माला के बारे में कि ये दुर्वासा मुनि के द्वारा दिया हुआ उनका महाप्रसाद है, ये तो गलत चीज आ गई है हमारे स्वामी के पास, कुचल दिया जाए इसको। तो अपने पांव से, ऐरावत हाथी का पांव तो हमसे तो बड़ा ही होगा ना, तो ऐरावत ने अपने पांव से जो है उस माला को कुचल दिया। दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधित हुए, तो बड़ा बड़ा अपमान है, अगर आप अपने गले की माला इनको देंगे और ये कुचल दें, या इनका हाथी कुचल दे, इनके पास हाथी तो नहीं है जो भी है, तो आपको ये देखकर खुशी नहीं महसूस होगी, अच्छा नहीं लगेगा आपको, नहीं, बुरा महसूस करेंगे, अपमान है, अनादर की भावना है, अपराध है। दुर्वासा मुनि भी क्रोधित हो गए, तो दुर्वासा मुनि ने शाप दिया, ऐश्वर्य से वंचित हो जाओ, बहुत अधिक धन आ गया आपके पास, इसलिए अहंकार बहुत बढ़ गया है, सोच रहे हो कि बहुत शक्ति है तुम्हारे पास, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत धन है, अपने आप को स्वामी मानते हो, ईश्वर मानते हो, आप गरीबी का दर्शन करो, ऐश्वर्य से वंचित हो जाओगे अभी तो तुरंत तत्काल। तो देवताओं की शक्ति जो ऐश्वर्य हो गई, असुर लोग बड़े शक्तिशाली हो गए, देवता लोग घबरा गए। तो देवता लोग बहुत ही असहाय अवस्था में थे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि हम क्या करें अब। तो ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान के पास गए, क्षीर सागर में भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने बताया कि ये लीला मैं करने वाला हूं, संधि कर लो देवताओं के साथ, सॉरी असुरों के साथ, असुरों के साथ संधि कर लो। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया भगवान ने, एक कथा सुनाई उन्होंने चूहे की और सर्प की। एक बार वो एक टोकरी में, बास्केट में फंस गए, दोनों के दोनों एक साथ फंस गए। सर्प तो बड़ी आसानी से चूहे को खा लेता है, चूहा बिल बनाता है तो सर्प क्या करता है, उस बिल में घुस के चूहे को खा लेता है, होता है ना। लेकिन एक दफा क्या हुआ कि दोनों एक साथ ही एक टोकरी में फंस गए और बाहर निकल नहीं सकता था चूहा, सर्प बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि सर्प जो है कुतर नहीं सकता है, चूहा कुतर सकता है, अपने दांत उसके बड़े ही नोकीले दांत होते हैं तो उसको वो वहां छिद्र बना सकता है। लेकिन चूहे को डर किससे है, सर्प से है डर। अब सर्प ने योजना बनाई, देखो मैं चाहूं तो तुम्हें बड़ी आसानी से खा सकता हूं, मेरे लिए चुटकी भर अलग काम है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, हम संधि कर लेते हैं। संधि यह है कि आप इस टोकरी को कुतरो, कुतरने के बाद छेद बनेगा, स्थान मिल जाएगा मैं बाहर जाने का, हम दोनों ही बच जाएं, फिर तुम्हें मैं नहीं खाऊंगा। तो चूहे ने फिर कुतरना शुरू किया, इसमें तो नहीं बताया गया लेकिन ऐसे समझ जाना चाहिए कि चूहा जो है उसे कुतरना शुरू किया। सर्प को पता चल गया अब जगह काफी है, पर्याप्त है बाहर जाने के लिए, अब चूहे को दबोच लो। तो यही योजना यहां पे, इसी योजना का प्रस्ताव या भगवान रख रहे हैं देवताओं के समक्ष कि असुरों के साथ संधि कर लो। जब समुद्र मंथन से बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा, रत्न निकलेंगे, नाना प्रकार के धातु पदार्थ निकलेंगे, स्वयं लक्ष्मी जी भी प्रकट होंगी, बहुत कुछ प्रकट होगा, फिर अंततः उस समुद्र मंथन से अमृत प्रकट होगा, वो मैं आपको दे दूंगा। क्या संधि की है भगवान ने, देखिए इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। अब देखिए भगवान ने योजना बना दी, ठीक है इसके लिए क्या करना होगा, मंदरा पर्वत को उखाड़ के लाना होगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। मंदरा पर्वत सोने का पर्वत है, ऐसा नहीं कि आप और हम मिलके उसको हिला लेंगे, देवता रसूल लोग उसको मिलाकर उठा रहे थे, बहुत भारी था, उठाने में बड़ी तकलीफ हुई उनको, और कुछ दूरी तक तो चल दिए लेकिन बाद में फिर उनके हाथ और पांव दोनों ही टूट से गए और जख्म हो गया, घाव हो गया उनके शरीर में। उनका आप तो ये मंदरा पर्वत हमारे बस का नहीं है, इसको हिलाना। तो उस समय भी भगवान ने आके सहायता की, उस समय भी भगवान ने आकर सहायता की और मंदरा पर्वत को भगवान ने क्या किया, उठाया अपने एक हाथ से और गरुड़ जी के ऊपर रख लिया और बड़ी आसानी से मंदरा पर्वत कहां पहुंच गए, क्षीर सागर पहुंच गए भगवान मंदरा पर्वत को लेकर। तो ये भगवान की अचिंत शक्ति है ना। इसलिए इस श्लोक में बड़े गहरी बातें हैं अगर देखा जाए, जैसे यहां बता रहे हैं कि हाला हाल जो जहर निकला, भगवान ने शिव जी को कहा, महादेव को कहा कि आप ये जहर ले लीजिए, आप पीजिए जहर, बहुत अच्छा है, अमृत हुआ तो देवताओं को दे दिया और जहर दे दिया महादेव को, शिव जी को, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान क्या ये करने में सक्षम नहीं है, और इस लीला में हमने क्या देख रहे हैं, लेकिन कि भगवान ही तो सब कुछ कर रहे हैं, मंदरा पर्वत उठाने के लायक नहीं थे ना देवता में ना सुरगढ़, तो यहां पे भी भगवान ने ही उस पर्वत को उठाया है। और उसके बाद जब वो मंथन करने लगे, मंथन करते करते थक गए, वासुकी को बुलाया गया, सर्प रस्सी के रूप में उसका उपयोग किया गया और मंदरा पर्वत को बांधा गया अच्छी तरह से, उसको एनसर्कल किया गया। उसके बाद फिर मंथन करने लगे, मंथन करने पर भी उसमें खतरा क्या हुआ कि बंदा पर्वत जो है वो हिलने डुलने लग गया, ऐसे ऐसे हिलने लग गया, सपोर्ट नहीं मिल रहा था उसको, उसको सहारा नहीं मिल रहा था, उसको कोई आधार नहीं था। तो मंदरा पर्वत को लेकर वो मंथन कर रहे वासुकी के सहारे, उसमें भी क्या हुआ, देखिए क्या क्या समस्या है। देखिए संसार में अभी देवता और असुर जो ऐसे हैं, देवता कुछ कहेंगे तो असुर निश्चित रूप से उसको उल्टा ही कहेंगे। अब समझने बात, बहुत सारी बातें यहां नहीं बताना चाहते हम कई बार देखा गया है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, सही बात कही जाती है तो सही बात जो कह रहा है उसको गलत साबित करने के लिए कई और बातें बताई जाती हैं। ये संसार का नियम है, जहां देवता होंगे वहां असुर भी होंगे, और ऐसा नहीं है कि कलयुग में देवता और असुर का विभाजन हो जाएगा, ये देवता का सेक्शन है या असुर का सेक्शन है, हमारे भीतर ही देवता और असुर है। तो इसलिए ये भाव, ये लक्षण, ये गुण हम भी कई बार प्रकट करते हैं। तो यहां पर देवता एक बात बोल रहे हैं, असुर एक बात बोल रहे हैं, और भगवान ने क्या किया, भगवान अजीत का भी अवतार हुआ और उन्होंने अपने आप ही उन्होंने जाके जो है उस सर्प के जो क्या कहते हैं फ्रंट पोर्शन जिसको है, जो आगे का भाग है, यानी कि जहां पर उसका मुख है, जहां फन है, वो जाकर पकड़ लिया। क्यों, असुरों का ख्याल रखते हुए, क्योंकि उनको लगा कि चलो असुरों को ऐसा ना लगे कि जो अशुभ चीज है वो हमारे हाथ पकड़ा दी और जो शुभ चीज है, अच्छी चीज है, वो अपने हाथ ले ली। तो सर्प का जो आगे का भाग है, फ्रंट पोर्शन है, जहां उसका मुख होता है, जहां उसके फन होते हैं, वो बड़ा ही अशुभ माना जाता है, वहीं जहर होता है ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, असुरों को हम ज्यादा, और असुरों को भगवान ने भी बताया था जब ब्रह्मा जी के साथ देवता गए थे तो वहां जो प्रार्थना हो रही थी, तो भगवान ने उनको ये भी बताया कि देवता लोग कुछ अगर प्रस्ताव रखें, अगर कुछ कहें तो चुपचाप मान लेना, कुछ वहां पे बहस नहीं करना, क्रोधित मत होना, बड़ी शांति से हम करेंगे अपना कार्य। तो इसलिए भगवान ने भी यही सोचा ठीक है कि इससे पहले कि ये किसके ऊपर कोई चर्चा हो, मैं ही जाके जो है इस सर्प का जो आगे का भाग है, फ्रंट पोर्शन है, उसको मैं खुद ही पकड़ लेता हूं। लेकिन हमने जैसे बताया कि देवता तो उल्टा ही बोलेंगे, उनको लगे अरे वाह, ये कैसे फ्रंट पोर्शन होल्ड कर सकते हैं, आगे का पोर्शन निश्चित रूप से जो है बड़ा ऑस्पिशियस होगा। इस वजह से भगवान ने देवताओं का साथ दिया है, इसलिए इन्होंने आगे का भाग पकड़ा है, बहुत अच्छा है। तो दासुरों ने कहा कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है, हमें आगे का जो भाग है उसको पकड़ने का हमें अवसर दिया जाए। तो भगवान ने कोई चर्चा नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है हम पीछे ही चलते हैं, अब आगे आ जाओ, बात तो वही है, मंथन ही तो करना है, आगे से पकड़ो या पीछे से पकड़ो, तो पकड़ना तो दोनों का ही पड़ेगा। तो भगवान ने इशारा कर दिया देवताओं को, चलो भैया पीछे आ जाओ सब। तो सर्व का जो पिछला भाग है उसको पूंछ को पकड़ लिया और असुरों ने जो है फ्रंट पोर्शन पकड़ लिया। तो कितना सारा, देखिए कितनी सारी समस्याएं, देखिए नहीं छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन छोटी छोटी समस्या अधिक पड़ती है, लेकिन है कितना बड़ा, बहुत बड़ी समस्या है, आसानी से कोई कार्य होता नहीं है संसार में। इस भौतिक संसार में हर समय कोई ना कोई कष्ट में विपद हाके बोलते, क्या बोलते हैं वो श्लोक जो है, समाशित ये पद पद प्लभम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवान बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 विपदम नादेशा। पद पद पर खतरा है, पद पद पर कष्ट है, स्वर्ग लोग में जाइए, कहीं भी जाइए, शीर सागर के बिल्कुल नजदीक है, वहां पे भी ये समस्या चल रही है, बताइए कहां बचेंगे, बताइए कहीं बचने की जगह ही नहीं है। तो वहां पे फिर भगवान अजीत ने ये देखा कि ये लोग हाँ ठीक है सर्प के सहारे जो है मंथन कर रहे हैं लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है समुद्र से। उन्होंने कहा ठीक है ये भी मैं करता हूं। हम कुछ करने लायक है नहीं वास्तव में, अंश जरूर है भगवान के लेकिन वास्तव में हम कुछ करने लायक नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा निमित्त मात्र भव सर्वेश। अर्जुन ने भी ये सोचा था जो भील होते हैं ट्राइबल जो लोग होते हैं उससे उनको हारना पड़ा महाभारत के युद्ध के बाद। वो अपना अस्त्र शस्त्र भी ठीक से नहीं उठा पा रहे थे, कमजोर पड़ गए। महाभारत के युद्ध में कितने सारे योद्धाओं को मार रहे थे, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। और भगवान ने हरिवंश पुराण में तो खैर बहुत विस्तार से वर्णन किया गया कि किस तरह से भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं बात कि मैंने महाभारत का युद्ध लड़ा और उसमें कितने हजारों हजारों सैनिकों को मारा लेकिन क्या कारण है कि ये जो भील है और ये जो आदिवासी है इनके द्वारा भी परास्त हो गया, मैं कमजोर कैसे पड़ गया, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा कि महाभारत के युद्ध में भी तुम कुछ नहीं कर रहे थे, मैं ही कर रहा था, सब कुछ मैं ही कर रहा था। सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण वही है, केवल कारण ही नहीं है बल्कि करने वाले भी वही है। दिखाई नहीं देता है, बस हमें दिखाई क्या देता है, मैं ही करता हूं, अहम भोगी अहम बलवान अहम सुखी, मैं ही सुखी हूं मैं ही बलवान हूं मैं ही भोगी हूं मैं ही करता हूं मैंने ही सब कुछ किया है मैं ही ईश्वर हूं। इस कारण से अब देखिए, इसलिए अर्जुन को भगवान बता रहे हैं महाभारत की युद्ध के बाद देखो अर्जुन वो देखो इस पताका में देखो कौन बैठे हैं। इस पताका में हमारे रथ के ऊपर जो पताका है, पताका मतलब फ्लैग, इस झंडे में कौन बैठा है? तो हनुमान जी बैठे हैं साक्षात। ये हनुमान जी बैठे हैं ना इसलिए तुम बच गए। अरे कैसे? अभी बताता हूं, पहले तुम उतरो। नहीं नहीं पहले आप उतरिए, आप पहले उतरिए। नहीं नहीं पहले आप उतरो। तो उसके बाद अर्जुन नीचे उतर गए। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण जब उतरे नीचे तो विस्फोट हो गया रथ में। बोलते हैं अगर पहले मैं उतरता तो तुम नहीं बचते, क्यों? फिर क्या देखा उन्होंने पताका में? हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी वहां से ओझल हो गए महाभारत के युद्ध के बाद, उस पताका से ओझल हो गए। वो देखो हनुमान जी नहीं है ना, इसलिए ये विस्फोट हो गया। और ये हनुमान जी नहीं होते महाभारत के युद्ध में तो जितने बाण चलाए गए थे वो साधारण बाण तो थे नहीं, उन बाणों से ही विस्फोट हो जाता रथ पे, उसका प्रभाव अभी भी पड़ा हुआ है, ऐसे बाण है ये। इसलिए मैं पहले उतरा, अगर तुम पहले उतरते सॉरी अगर मैं पहले उतरता तो फिर तुम बचते नहीं, निश्चित रूप से तुम खत्म हो जाते। तो ये बड़े, इसलिए शुद्ध भक्तों की कृपा भगवान की कृपा इसको कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारा ये पूरा आंदोलन हमारे पूरा संप्रदाय ये सब कुछ आधारित है कृपा के ऊपर। इसलिए हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण कृपा मूर्ति इज डिवाइन ग्रेस, उन्हीं का ग्रेस है उन्हीं की कृपा है। देखने में ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, देखने में ऐसा लगता है जैसे कई बार क्रिस्टल में देखते हैं स्फटिक होता है उसमें से तरह तरह की रोशनी निकलती है प्रकाश निकलता है, लेकिन वो प्रकाश जो है वास्तव में कहां से निकल आ रहा है? सूर्य से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य भी अगर ये सोचे कि मेरा प्रकाश है ये भी भ्रम है। यह स्या गया भ्रमति समृद्ध काल चक्रो, जिसकी आज्ञा से? किसकी आज्ञा से? भगवान की आज्ञा से ये सूर्य जो है भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य का जो प्रकाश है ये भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश है। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जिनके दिव्य शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है। जन्मादि यस्य अतः यथोन्मयात, इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही बता दिया गया है कि आदि कारण भगवान श्री कृष्ण ही है, भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत के दोनों के। और यही बात यहां पे इस लीला में बार बार इस बात पे जो है जोर दिया जा रहा है। प्रत्येक कदम में हम देख रहे हैं कि भगवान का वहां पर हाथ है, हर जगह भगवान मदद कर रहे हैं सहायता कर रहे हैं। और यहां पर जब जहर भी निकला तो भगवान ने किसको श्रय दिया है? शिव जी को श्रय दिया है, महादेव को श्रय दिया है, उनका यश बढ़ाने के लिए, उनका गौरव बढ़ाने के लिए। लेकिन कोई बेवकूफ सोचे कि शिव जी ने जहर पिया है तो हम भी रासलीला कर सकते हैं, है ना। इसलिए श्रीमद भागवत के दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट बताया, बहुत सुंदर बात बताई है, नैत समाचरे जातु मनसापी ही अनिश्वर। जो ईश्वर नहीं है, जो ईश्वर नहीं है वो ऐसे बड़े बड़े ईश्वरों की नकल नहीं कर सकता। जो वास्तव में ईश्वर है उनकी नकल नहीं कर सकते। जो अपने आप जो ईश्वर नहीं है, जो वास्तव में नियंता नहीं है, मन से भी नहीं कर सकते हैं, नकल नहीं कर सकते हैं। मनसापी नहीं तत् समाचरे जातु मनसापी ही अनिश्वर। मन से भी जो है हम क्या नहीं कर सकते हैं, नकल नहीं कर सकते हैं, इमिटेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे आचरण का जो है हम लोग नकल नहीं कर सकते हैं। विनश्यति क्या होगा, करने से क्या होगा, विनश्यति आचरण मोढ़्यार। और मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं नकल कर सकता हूं तो वो अपने आप को नष्ट कर देगा। विनश्यति यथा कैसे, यथा रुद्रोब्धि जम विषम। जिस तरह से कोई व्यक्ति सोचे कि हाँ शिव जी ने जहर पिया था तो हम भी जहर पी लेते हैं, हाल हाल जहर पी सकते हैं हम क्या, हमारे लिए तो फिनाइल का बोतल ही पर्याप्त है। लेकिन कलयुग में फिनाइल का बोतल भी नहीं काम करता। एक मूवी में देखा था हमने, एक व्यक्ति बेचारा आत्महत्या करना चाह रहा था, बहुत निराश हताश हो गया, उसे फिनाइल का बोतल खोला और फिनाइल का पूरा पी लिया और मरा नहीं, लेकिन उसे केस कर दिया उस कमरे में। लेकिन पकड़ा किसको पता है, इसी को पकड़ा जिसे फिनाइल का बोतल पिया था, क्योंकि ये अटेम्प्ट था आत्महत्या करने के लिए। तो अरेस्ट किसको किया गया था, कंपनी को नहीं। कंपनी ने कहा कि देखिए जहां तक ये बात है फिनाइल की बात है, हम जानबूझ के ऐसा बना रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले हादसे हो चुके हैं, लोग जहर पीते जहर समझ के इसको पीते थे, इसलिए हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं फिनाइल में। लेकिन ये व्यक्ति जो है इसे आत्महत्या करने के लिए ये फिनाइल पिया, तो बताइए कौन दोषी है। तो जजमेंट पास हुआ, उसी को पकड़ा गया जो आत्महत्या करना चाह रहा था। इसलिए हमें हम नकल करेंगे तो हमारी अकल खराब होगी, नकल नहीं की जा सकती है। महात्माओं महाजन ये न कथा सपनता, महाजन जैसा करके हैं वैसा करना, यानी कि उनके आदेशों का पालन करना है, ये है, ये सबसे बड़ी बात। नहीं तो फिर जैसे चैतन्य चरितामृत में बताते हैं ये सब, देखिए अब बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात यहां बताई जा रही है, ये जो समुद्र मंथन है, ये मंथन समुद्र मंथन जो है हम लोग भी रोज कर रहे हैं प्रत्येक दिन। हमें इस अमृत की आशा नहीं है, लोग जाते हैं नासिक उज्जैन कुंभ मेले के लिए महाकुंभ में, या फिर प्रयाग जाते हैं महाकुंभ में, किसके लिए, इसी अमृत के लिए, जहां जिसके लिए झगड़ा हुआ है इसी के लिए तो जा रहे हैं। ये अमृत ही तो गिरा है यहां पर, अमृत से क्या होगा, अमर हो जाओगे आप इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर, जब तक हम कभी अमर नहीं हो सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक जीवित रहेंगे आप, बहुत पर्याप्त शक्ति मां मिलेगी आपको, लेकिन फिर भी नित्य परिकर तो नहीं बन सकते हैं भगवान के इस अमृत को ग्रहण करके। इसलिए किसी ने बताया कि कुंभ मेले में कोई जाता है वहां पर गंगा जी है, यमुना जी है, सरस्वती नहीं है, तो किसी ने कहा कि जहां साधु संत महात्मा लोग जो भागवत कथा करते हैं तो उनके मुखारविंद से वो सरस्वती जी बाहर निकलती हैं, उसका अगर हम पान करेंगे तो निश्चित रूप से हम अमृत को अमर होने की अवस्था को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो अमृत निकल रहा है किससे, किसके मुख से, वैष्णों के मुख से, साधुओं के मुख से। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो ये कथामृत जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है हम सब भक्तों के लिए। जब कथामृत का हम जब पान करते हैं तो ये मंथन शुरू हो जाता है, ये मंथन प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन हम लोग हरि नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये है मंथन, ये है अमृत महोत्सव, ये है वास्तव में सागर मंथन। और क्या होगा जब मंथन करेंगे, हरि नाम का उच्चारण करेंगे, जानते क्या होता है, हम सब जानते हैं, जब जब इस हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो हृदय से हाला हाल जहर निकलता है, है ना, कूटी नाटी जीव हिंसा निषिद्ध आचार लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उप शाखा मन चेतन्य चरितार्थ बता रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये सारे अनर्थ बाहर निकलते हैं, सोए हुए थे सब निकलते हैं बाहर। फिर जो यहां देवता असुरों ने जैसा किया देवताओं के साथ वही कार्य हम भी करने लगते हैं, लेकिन लगे रहते हैं जब हरिनाम लेते रहते हैं मंथन अगर चलता रहता है तो अंततः क्या होता है, ये असुर सारे समाप्त हो जाते हैं और असली अमृत प्रकट होता है, असली रुचि पैदा हो जाती है नाम के लिए, नामामृत जो है उसका आस्वादन कर पाते हैं हम। और जिस दिन हमें इस नामामृत का आस्वादन कर लिया तो फिर हो गए अमर, हम शाश्वत को हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये सागर मंथन जो है हमें शुरू कर देना चाहिए जिन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार इन बातों को बड़ा अच्छी तरीके से हमें समझना है। यहां पे महादेव को श्रेय दिया है कि भगवान जो अपने भक्तों के माध्यम से कार्य करना चाहते हैं, स्वयं तो सभी कुछ कर ही रहे हैं वो। जैसे प्रभुपाद कल हम सुन रहे थे प्रवचन में, प्रभुपाद इसी श्लोक के प्रवचन में कह रहे हैं जन्मेश्वरी सूत्र श्री भी कि रशिया में कम्युनिज्म जब बड़ा एक्टिव था यूएसएसआर सोवियत यूनियन, तो वहां पे गांव में लोग चर्च जाते थे। उन्होंने कहा कि अब चर्च क्यों जाते, हम चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं वहां जाके, गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, हमें रोटी दीजिए, हम ये प्रार्थना करने आए हैं आपसे। तो जैसे चर्च के बाहर आए तो वहां पे जो कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन से वो ट्रक लेके आए थे, उन्होंने पूछा उनसे कि ब्रेड मिल गया आपको, कितने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं आप, ब्रेड तो नहीं मिला। तो उन्होंने ट्रक खोला, ट्रक जैसे ही खोला उन्होंने पीछे से ब्रेड ही ब्रेड थे, पूरा ट्रक ब्रेड से भरा हुआ था। तो इतने दिन तुम लोगों ने प्रार्थना की चर्च में जाके, आज तक तुम लोगों को ब्रेड नहीं मिला, लेकिन आपने हमसे ब्रेड मांगा, देखो ब्रेड ही ब्रेड है। प्रभुपाद कहते हैं वो सब शूद्र थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहां सरकार ही सब कुछ है, वो हमें ब्रेड दे रही है। फिर प्रभुपाद कहते हैं अनाथ भवंती भूतानी फलजन्यात अन्न संभवा यज्ञात भवती परजन्य, यज्ञ होगा तो फिर क्या होगा, बरसात होगी, यानी कि बाढ़ आ रही है तो वो भी यज्ञ के कारण है, या फिर सही समय में बरसात आना ये यज्ञ का फल है। प्रभुपाद जी कहते हैं रात को बरसात हो और सुबह के वक्त सूर्य उदय, सूर्य का प्रकाश हो, इस तरह से जमीन उपजाऊ बनती है, यह यज्ञ का फल। अन्नात भवति भूतानि परजन्यात अन्न संभवा, बरसात होगी तो अन्न उत्पन्न होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद कहते हैं जो ब्रेड बना रहे हैं फैक्ट्री में ये तो केवल एक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो केवल एक विकार है। अन्न जो प्राप्त हुआ है आपको खेत से उसी का ही तो परिवर्तन है, नहीं तो ब्रेड बना सकते हैं आप फैक्ट्री में, आलू बना सकते हैं फैक्ट्री में, क्या बना सकते हैं हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं। फिर प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि एक कारपेंटर आता है और अगर आपके लिए क्लोजेट या फिर कोई टेबल बनाता है और आप वो जो है आप सप्लाई करते हैं उसको लकड़ी वगैरह, और बाद में कारपेंटर बोलता है टेबल मेरी हो गई क्योंकि मैंने बनाया है। कर्ता हम इति मन्यते अहंकार अभिमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, तो भगवान यही बता रहे गीता में। तो ये जो आंदोलन है, ये भक्ति का जो आंदोलन है, ये कृपा से परिपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए इस बात को समझे, एहसास करे कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूं भले वो भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो, ये सब कृपा के ऊपर निर्भर है, ये भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। भगवान की कृपा नहीं होगी तो ये पंखा नहीं चलेगा, बिजली नहीं मिलेगी आपको, पानी नहीं मिलेगा, फिर क्या उन्नति हम कर सकते हैं। जहां हवा में जैसे बड़ा अच्छा बताया किसी ने, एक कोई बहुत बड़े भक्त हैं ब्रज के, उन्होंने बताया कि जब यमुना जी में जब प्रदूषण हुआ तो भगवान कृष्ण ने कालिया का दमन किया, वायु का जब प्रदूषण हुआ तो भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया, वायु का जब प्रदूषण हुआ तो भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया, और भगवान श्री कृष्ण ने गायों का पालन किया गोपाल वन का। तो हम कहते हैं अपने आप को कृष्ण भक्त, हमने क्या किया ब्रज में आके, हमने ना वायु का प्रदूषण उठाया, प्रदूषण दूर किया, ना जल का प्रदूषण दूर किया, बल्कि जल को पूरा प्रदूषित कर दिया और यमुना जी को आने से ही बंद कर दिया। और वायु में प्रदूषण हम फैलाते जा रहे हैं और फैलाते जा रहे हैं। कौन? दिल्ली वाले जब वृंदावन जाते हैं, विशेष रूप से दिल्ली का प्रदूषण ब्रज में लेके जा रहे हैं। यही हमारा योगदान है कृष्ण भक्ति का ब्रज के लिए। तो कैसे ब्रजवासी बन पाएंगे? बड़ा अच्छा बताया मेरे बात। तो ब्रजवासी का मतलब क्या है? इन सबकी सेवा करो। तो कृपा के ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर हैं, भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है, इस बात को हमें कतई नहीं भूलना है। कर्ण को भी देखिए, कर्ण जब आक्रमण कर रहा था अर्जुन के ऊपर, महाभारत के युद्ध में भी देखते हैं तो अर्जुन को किसने बचाया? भगवान नहीं बचाया, नहीं। और भगवान ने कहा कि कर्ण के ऊपर आप बाण चलाओ, गर्दन उड़ा देता कर्ण अर्जुन का, लेकिन भगवान ने भी वहां पर भी रक्षा की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान हर जगह रक्षा कर रहे हैं, उनकी कृपा हर जगह दिखाई पड़ती है, लेकिन देखने की दृष्टि होनी चाहिए। देखने की दृष्टि कौन देता है? भक्त देते हैं, गुरु देते हैं, वैष्णव देते हैं। ये कई बार ऐसा होता है, लेकिन हम जब सेवा भी करते हैं तो हम लोग भी भूल जाते हैं कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो वास्तव में कृपा के ऊपर आधारित है। जो भी हम कर पा रहे हैं, भक्त बना पा रहे हैं, ग्रंथ बांट पा रहे हैं, या ये मंदिर बना पा रहे हैं, या भगवान के मंदिर के लिए हम लक्ष्मी दे पा रहे हैं, बहुत अधिक धन दे पा रहे हैं निर्माण के लिए, ये भी भगवान की कृपा है। भगवान सबसे सेवा नहीं लेते हैं, उनको हमारी सेवा की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेवे मानव गोलो वृंदावन में लाखों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी, उनको आवश्यकता नहीं है, कमी कोई नहीं है। लेकिन हम थोड़ी सी सेवा कर ले और ये सोचे कि हमने सब कुछ किया है, तो ये बहुत अंधकार में हम लोग हैं। कृपा, इसलिए कृपा, इस कृपा को हमेशा समझना। इसलिए रूप गोस्वामी बड़ा अच्छा बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, बड़ा आश्चर्य होगा आपको सुनकर। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हम ये ना सोचें क्योंकि हम साधना कर रहे हैं तो साध्य की प्राप्ति उससे हो जाए। केवल को यह सोचे कि केवल साधना भक्ति से साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, एक भ्रम है। आपने सुना ये बात? नहीं सुना? तो इसमें क्या रहस्य है? इसमें रहस्य ये है, श्री रूप गोस्वामी ये बता रहे हैं कि साधना भक्ति जो हम करते हैं वो केवल हम अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हम भक्ति में इंटरेस्टेड हैं, आपकी सेवा में इंटरेस्टेड हैं, हम भक्ति करना चाहते हैं, इस भाव को व्यक्त करते हैं साधना भक्ति में भाग लेकर। लेकिन निश्चित नहीं है कि उससे जो है हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम कब मिलेगा? जब उसमें गुरु वैष्णव की कृष्ण की कृपा होगी। तो हमारी साधना भक्ति भी जो है वो कृपा के ऊपर निर्भर है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हमारी सारी सेवाएं जो है कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर है, भक्तों की कृपा के ऊपर निर्भर है। स्वाभाविक है, माया बहुत प्रभावशाली है। कुछ साल जैसे जैसे बीतते हैं हमारे, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल, जैसे जैसे साल बीतते हैं क्या होना चाहिए? वास्तव में जब साल जब बीत जाते हैं, काफी साल बीतते हैं हमारे भक्ति करते हुए, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल बीत जाते हैं, तो क्या भाव आना चाहिए हमारे अंदर? क्या लक्षण प्रकट होना चाहिए? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। लेकिन हम क्या सोचते हैं? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य बॉस। हम कृष्ण के भी बॉस हैं, क्योंकि हम पुराने हो चुके हैं, हमने बहुत साल जो है सेवा कर ली है, अब हम स्वयं नियंता हैं। तो यानी कि जो भक्ति के द्वारा जो फल प्राप्त होना था वो फल प्राप्त ही नहीं हुआ। जो ये साक्षात्कार होना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, मैं सेवक हूं, गोपी भरतुर पद कमले और दास दान सान उदास, वो भाव नहीं प्रकट हो रहा और भाव कुछ और ही प्रकट होने लगा। कूटी नाती जीव हिंसा निशिदाचार लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखा, ये सारी उपशाखाएं प्रकट हो गई। तो क्योंकि ये कारण क्या है इसका? कारण केवल ये है क्योंकि हम भूल गए कि जो भी सफलता हमें प्राप्त हो रही है वो गुरु की कृपा से प्राप्त हो रही है, प्रभुपाद की कृपा से, परंपरा की कृपा से प्राप्त हो रही है। कोई कह सकता है श्रील गौरकिशोर बाबा जी महाराज तो भजनानंद थे, उनके तो केवल एक ही शिष्य थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कितने सारे शिष्य बना दिए और प्रभुपाद ने उनसे ज्यादा शिष्य बना दिए। तो प्रभुपाद कह सकते थे सबसे ज्यादा देखो सफलता मुझे मिली है, बाबा जी महाराज के तो एक ही शिष्य थे, मेरे देखो 5,000 शिष्य हैं। प्रभुपाद ने कभी ऐसा कहा नहीं प्रभुपाद ने यही कहा कि जो भी कुछ मैंने किया है वो मेरे गुरुदेव की कृपा है। और देखा जाए तो गौर किशोरनाथ बाबा जी महाराज हालांकि वो भजनानंदी थे लेकिन सबसे बड़े गोष्ठानंदी को उन्होंने प्रकट कर दिया। उनसे बड़ा कोई गोष्ठानंदी आज तक हुआ ही नहीं। एक शिष्य पर्याप्त है, इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक चंद्रमा पर्याप्त है, बहुत सारे सितारों को होने का क्या फायदा। तो वो चंद्रमा क्या है, वो सूर्य क्या है, वो कृपा से परिपूर्ण है, वो प्रकाश भगवान कृष्ण से उसको प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरह से कृपा शक्ति में केवल क्या है, शरणागति की आवश्यकता है। जहां श्रद्धा होती है वहां शरणागति होती है, और जहां शरणागति होती है वहां श्रद्धा होती है, यानी कि सिनोनिम है। यानी कि जहां शरणागति नहीं है वहां श्रद्धा नहीं है, और जहां शरणागति नहीं है श्रद्धा नहीं है, वहां शरणागति की शरणागति का अभाव रहता है। तो इसलिए उस समय जहां शरणागति नहीं होती है, शरणागति का अभाव होता है, वहां इस कृपा को नहीं समझ पाते। इस कृपा को नहीं समझ पाएंगे कि भगवान ने महादेव के ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। बाहरी दृष्टिकोण से यह लगता है कि शिव जी को महादेव को जहर दे दिया, कह दिया भगवान ने कि जहर पी लो, लेकिन शिव जी को बाद में नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है नीलकंठ महादेव के रूप में। इसलिए भागवत में क्या है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैश्वानाम यथा शंभु पुराणम इदम तथा, कि वैष्णव में महान शिव जी महादेव को इसलिए बोला गया है क्योंकि भगवान की कृपा को पूरी तरह से वो स्वीकार कर रहे हैं, पात्रता है उनमें। इसलिए जब भागीरथी भागीरथ वो चाह रहे थे कि गंगा जी प्रकट हो जाए इस पृथ्वी में आ जाए, भगवान ने अपने चरणों से गंगा जी को लेकर आए, फिर ब्रह्मांड में प्रवेश कराया, शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया उसको, बहुत तेज प्रभाव था उसको नहीं, और अगर शिव जी धारण नहीं करते तो क्या होता हमारा, हम होते ही नहीं, यहां पे बैठ के जाते हैं हम होते ही नहीं। तो इसलिए महादेव ने अपने शीश पे धारण किया है और उनके जो जटाओं से जो गंगा जी प्रकट हो रही है वो हम सबके लिए कृपा है, चरणामृत है, वो चरणामृत हमें प्राप्त हो रहा है, महाप्रसाद प्राप्त हो रहा है। ये चरणामृत क्या है, ये गंगा का जल क्या है, ये महाप्रसाद है भगवान का। इसलिए हम देखते हैं कि भुवनेश्वर में भी जाते हैं लिंगराज महादेव के मंदिर में, आजकल तो ये है नहीं पता नहीं शायद प्रथा, लेकिन पहले जरूर था कि सबसे पहले भगवान अनंत वासुदेव को भोग लगता था, उसके बाद फिर लिंगराज महादेव के पास वो महाप्रसाद जाता था। उसी तरह जगन्नाथपुरी में भी देखते हैं जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसके बाद विमला देवी को जाता, राइट। तो यही है वास्तव में कृपा, जब बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषो विदु, ये जो बोलते हैं कि परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, केवल दिव्य ज्ञान नहीं, ये दिव्य ज्ञान के साथ कृपा भी प्राप्त हुई है परंपरा के माध्यम से। और कृपा को अगर स्वीकार कर लेते हैं, जिस तरह से महादेव ने अपने जटाओं में गंगा जी को स्वीकार कर लिया भगवान का आदेश समझकर, इस तरह से हम भी कृपा को स्वीकार कर लेते हैं, अपने मस्तक में धारण कर लेते हैं, अपने शीश में धारण कर लेते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। किसी ने कहा ये सीखा का क्या मतलब है, ये जो सीखा लगा सीखा पहनते हैं सीखा बांधते हैं हम लोग, इसका क्या अर्थ है। जैसे चैतन्य भागवत में लिखा है प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने टीका में लिखा, सीखा का मतलब है जिसने जिस भक्त ने अपने मस्तक पर भगवान की शिक्षाओं को धारण किया है, चैतन्य महापुरुष की शिक्षा को धारण किया है, उस स्थान को सिखा कहते हैं। जैसे सिख का मतलब ये शिक्षा, तो शिक्षाओं को धारण करने का मतलब क्या है कि कृपा को धारण करो, भगवान की कृपा को धारण करो। इसलिए महादेव ने उस कृपा को धारण कर लिया, जहर को स्वीकार कर लिया, संकोच नहीं किया, बहस नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की कि आप मुझे जहर दे रहे हैं, वहां पर सबको बाकी सबको अमृत पिला रहे हैं आप, होता ही नहीं होता ऐसा, हमारे साथ भी होता है। हमें अकेला भेज दिया गया है झूर तलैया में सेंटर खोलने के लिए, प्रचार करने के लिए, और खुद राजभोग महाप्रसाद पा रहे हैं दिल्ली में। तो इस तरह कई भक्तों को प्रभुपाद ने जैसे चाइना भेजा, पाकिस्तान भेजा, कहीं कहीं भेजा, तो ये सब क्या था, ये हालाहाल जहर के समान ही था, ये स्थान हालाहाल जहर से कम थोड़ना है जहां प्रभुपाद जी ने भेजा। बताइए कौन रहते हैं यहां पर, मनुष्य थोड़ा रहते हैं। किसी ने बताया बड़ा अच्छा बताया, हाँ हमने सुना था, इसलिए राधा कोई महाराज से सुना था, बोलते हैं मनुष्य में सबसे अथम होते हैं जो कुत्ता खाते हैं, जिनको चंडाल कहा जाता है,
लेकिन जो गौ मांस खाने वाले हैं वो मनुष्य भी नहीं है, वो राक्षस होते हैं। और ऐसे देशों में, ऐसे स्थानों में जो केवल राक्षस ही रहते हैं, वो हलाल जहर से कम है क्या, बताइए। और प्रभुपाद ने जाके अपने शिष्यों को भेजकर इस कृपा का वितरण किया है। और सौभाग्य की बात है, इन चंडालों ने भी, इन राक्षसों ने भी इस कृपा को स्वीकार किया है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने बोला वहां पर, क्या बोला प्रभुपाद ने अमेरिकन को, प्रभुपाद ने कहा, वो कहा कि प्रभुपाद कि आपके वजह से जो है हमें भक्ति का अवसर मिला है, सेवा का अवसर मिला है, भक्ति कर पा रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा भक्ति कर पा रहे हो क्योंकि मैंने आपको सुकृति दी है, आपके पास कोई सुकृति नहीं थी, आया क्यों नहीं सुकृति। तो सुकृति बांटने का भी जो है जिम्मेदारी प्रभुपाद जी ने ली है, और उस कृपा को, सुकृति को स्वीकार किया इन लोगों ने कृपा समझ के। नहीं तो हालाहाल जहर था, बौरी सीट में क्या था, वहां कोई अमृत वर्षा थोड़ा हो रही थी, वहां कोई सागर मंथन हुआ ही नहीं था, वहां तो केवल हालाहाल जहर था। और प्रभुपाद जी शिव जी के पद चिन्हों पर चलते हुए वहां उन्होंने जाकर हालाहाल जहर तो पी ही लिया, साथ में उनको क्या दिया, अमृत दे दिया, हरिनामामृत दे दिया प्रभुपाद जी। बात सही है कि नहीं? हालाहाल जहर पीने का मतलब क्या है? प्रभुपाद ने कई जगह बताया, एक शिष्य ने लिखा कि प्रभुपाद बहुत समस्या में हो, ये अनर्थ मुझे बहुत सता रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हारे सारे अनर्थ लात मार के भगा दूंगा, केवल तुम्हें प्रोसेस फॉलो करो। एक झटके में प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने कहा एक झटके में सारे अनर्थ में लात मार के भगा दूंगा, तुम केवल प्रोसेस को फॉलो करो। तो ये है हालाहाल जहर को कंज्यूम करना इतना आसान नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज आम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, सारे अनर्थ तुम्हारे समाप्त कर दूंगा, तुम्हें केवल अमृत मिलेगा, सारा हालाहाल जहर मैं पी जाऊंगा, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान और उनके जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं, वो हालाहाल जहर ही पी रहे हैं। केवल वहां पे शीर सागर में ही थे नहीं था ये हालाहाल जहर, इस पूरे ब्रह्मांड में वो हालाहाल जहर भरा हुआ है, हर देश में, हर शहर में हालाहाल जहर भरा हुआ है, हम सबके हृदय में हालाहाल जहर है। और शुद्ध भक्त इतने कृपालु होते हैं कि वो हालाहाल जहर हमारे हृदय से निकाल देते हैं, और ठीक से अगर हम मंथन करेंगे तो क्या होगा, इस नामामृत का आस्वादन कर पाएंगे। ये उद्देश्य, यही आने का हमारा उद्देश्य है इस आंदोलन में। नहीं तो उद्देश्य क्या है, अगर हम फंस जाए लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए या थोड़े थोड़े सुख सुविधा के लिए हम फंस जाए, नहीं अपने ही स्वार्थ के बारे में केवल चिंता करते रहे और भूल जाए कि वास्तव में गुरु परंपरा की क्या इच्छा है, तो फिर हमारे आने का उद्देश्य बेकार हो गया, सब व्यर्थ चला गया, ठीक कह रहे हैं नहीं? तो इसलिए हम सबको इस सागर मंथन में, समुद्र मंथन में भाग लेना है। और हमारी संस्था जो है इस समुद्र से कम नहीं है, इट्स लाइक एन ओशन, ये भी ओशन है और बाहर भी ओशन है, इट्स ओशन ऑफ मेटीरियल एग्जिस्टेंस, भव सागर जिसको कहते हैं। इस भव सागर में हालाहाल जहर बहुत भरा हुआ है और हम सब उस भव सागर के एक नागरिक हैं, तो हम सबको मिलकर मंथन करना है। अब ये नहीं कहेंगे कि कौन इसमें हमसे देवता है, कौन असुर है, मान के चलिए हम असुर ही हैं, देवता तो है ही नहीं, वहां तो केवल देवता भी थे, लेकिन धीरे धीरे फिर हम देवता बनने लगेंगे और फिर भक्त बनने का प्रयास करेंगे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए ये कथा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, भगवान इतने कृपालु हैं। देखिए उन्होंने मंदरा पर्वत को धारण करने के लिए कूर्म अवतार का धारण, कूर्म अवतार लिया, भगवान अजीत का अवतार लिया और महादेव को हालाहाल जहर दे दिया, महादेव ने इसको स्वीकार कर लिया, कोई संकोच नहीं किया उन्होंने, कोई वहां बहस नहीं हुई। इसलिए हम भगवत गीता में भी देखते हैं अर्जुन जब तक बहस करते रहे प्रथम अध्याय में, भगवान कोई उपदेश दे ही नहीं रहे उनको, क्योंकि उन्होंने कृपा का जो द्वार है, कृपा का जो अपना जो द्वार है, भक्ति का द्वार बंद करके रखा हुआ था, वो कृपा को आने नहीं दे रहे थे। सूर्य का प्रकाश आ रहा है आपके घर में, आपने एसी चलाया हुआ, हमने देखा है घर में गए थे हम गुड़गांव में, हमें पहली बार देखे हैरान हुई, हमने पूरा अपने जीवन भर में पहली बार देखा है किसी घर में एक भी खिड़की नहीं है, एक भी खिड़की नहीं है उस घर में, 24 घंटे एसी चल रहा है, बच्चे सब घर के लोग परिवार के सारे सदस्य एसी में रहते हैं 24 घंटे, खिड़की है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पाताल लोक है, सूर्य की रोशनी एक क्षण भी वहां प्रवेश नहीं करती है। पता नहीं भगवान का सुदर्शन चक्र कब आएगा, पाता तो इस तरह से लोग अंधकार में सूर्य का प्रकाश नहीं चाहते हैं, लोग अंधकार फैला हुआ, बस ट्यूबलाइट चल रहा है, लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, 24 घंटे बच्चे एसी में है, अज्ञानता में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। प्रकाश नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, अंधकार चाहिए, हालाहाल जहर चाहिए भारी मात्रा में। लेकिन भक्त फिर भी वहां पहुंच जाते हैं, संकीर्तन करते हैं उनके घर में और चाहते हैं कि वो भी समृद्ध का आस्वादन कर सकें। प्रचार में तो यही है, भक्त लोग जब प्रचार कर रहे हैं, ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सागर मंथन शुरू हो जाता है। जैसे ही आप ग्रंथ देते हैं किसी व्यक्ति, नए व्यक्ति के हाथ में, वो समुद्र मंथन शुरू हो गया वहीं पर, हाल जहर निकलने लग जाता है उनके हृदय से बाहर, उनकी चेतना से, और वो दिव्य ग्रंथ जो है उनकी चेतना में प्रवेश करता है, हरिनाम उनके करण से प्रवेश करता है। हम उसे बता रहे हैं किसी को कि आज ऐसा समय आ गया कि हरिनाम जो हम करना बंद कर दिए हैं, ग्रंथों का वितरण भी हम कम कर रहे हैं, साल में एक बार हम लोग जागते हैं, बरसात में भी मेंढक टर करता है हम देखते हैं कई बार, तो कई बार हम देखते हैं साल में एक बार हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं कि संकीर्तन भी करना है, वर्ल्ड होली नेम वीक है या फिर हमारा बुक मैराथन है, बाकी 11 महीने क्या होता है ऐसा, ये प्रश्न है। संकीर्तन आंदोलन में संकीर्तन ही नहीं हुआ तो फिर क्या किया हमने, क्योंकि असली मंथन तो संकीर्तन के द्वारा ही होगा। तार मध्य सर्वश्रेय नाम संकीर्तन, निरअपराध नाम लोए पाए प्रेम धन। हरिनाम इसलिए इतना आवश्यक है, जिस समय हरिनाम बंद हो गया, ग्रंथों का वितरण हो गया, समझ लीजिए हमारा आंदोलन भी बंद हो गया, उसी दिन उसी क्षण बंद हो गया, भले हम कुछ भी करते रहे। इससे सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए हरिनाम, इसलिए अधिक से अधिक भक्त जाए हरिनाम में जाए, ग्रंथों का वितरण अधिक से अधिक भक्त करें। स्वर्ण जयंती हम लोग मना रहे हैं, बड़ा अच्छा अवसर मिला है हमें ग्रंथों का वितरण करने के लिए, अधिक से अधिक मात्रा में बांटा जाए, अधिक से अधिक हरिनाम किया जाए, केवल 50 ही क्यों। लेकिन हम क्या इस मंथन में भाग लेना चाहते हैं, संकीर्तन के मंथन में भाग लेना चाहते हैं? प्रश्न है आपसे, बताइए आप सब तैयार हैं इस मंथन में भाग लेने के लिए? हरि बोल तो ठीक है, लेकिन उसके साथ करना पड़ेगा हमें। अच्छा रिमार्क दिया आपने हरि बोल कहके, लेकिन वी हैव टू डू प्रैक्टिकली। संकीर्तन हरिनाम केवल टेंपल हॉल या क्लास तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, हमारा ये पॉइंट है, हमें बाहर जाना पड़ेगा। बड़े बड़े हमारे पास मंदिर है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, संकीर्तन होना बहुत जरूरी है, यज्ञ होना जरूरी है। यज्ञ नहीं होगा तो हम अपना तो नुकसान करेंगे ही और पूरे संसार का नुकसान भी करेंगे, क्योंकि बाहर बरसात नहीं होगी। हम यज्ञ नहीं करेंगे तो कोई यज्ञ नहीं करेगा और उसके जिम्मेदार हम हैं। देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा हमारे कारण, देश में अकाल पड़ेगा हमारे कारण, क्यों? क्योंकि हम संकीर्तन नहीं कर रहे। कौन यह संकीर्तन करवाएगा? ब्राह्मण संकीर्तन कराएंगे, ब्राह्मण बोलेंगे राजा को, क्षत्रियों को कि यज्ञ करिए, बरसात नहीं हो रही है, अकाल पड़ा हुआ है। कौन बोलेगा? भक्त बोलेंगे। पृथ्वी महाराज थे, क्षत्रिय थे, लेकिन पूरी पृथ्वी ने यज्ञ कराया, महाराज बेण ने नहीं कराया। महाराज बेण के टाइम में कोई संकीर्तन नहीं था, कोई यज्ञ नहीं था। क्या हम महाराज बेण के अनुयायी हैं या महाराज पृथ्वी के अनुयायी हैं, बताइए किसके अनुयायी हम? श्री प्रभुपाद जी के अनुयायी, जो पृथ्वी महाराज के ही प्रतिनिधि हैं। जिस तरह से पृथ्वी महाराज ने पूरे पृथ्वी में पृथ्वी का पोषण किया, प्रभुपाद ने संकीर्तन के माध्यम से पोषण किया है। इसलिए नया हम लोग कोई प्रोसेस ना निकाले, संकीर्तन सर्वोपरि है, ये सभी आचार्यों का मत है। इसलिए जब भी हरिनाम होता है हम सबको जाना चाहिए, उसको सबको जाना चाहिए, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, जो भी हो, हम कोई भी हो, कुछ तो है। इसलिए हम सबको जाना चाहिए संकीर्तन। संकीर्तन नहीं हो रहा है अभी, हरिनाम नहीं हो रहा है। हमने कल प्रभुपाद जी के लेक्चर के बाद रथ यात्रा का दिखाया था, 1972 या 73 शायद था, सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा और एक फिलाडेल्फिया रथ यात्रा, उसमें विश्वजन स्वामी कीर्तन लीड कर रहे थे। वो देखने लायक है, आप देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में है, 5 मिनट का है सिर्फ, लेकिन आप वो देखिए क्या कीर्तन है वो, क्या उत्साह है भक्तों में। जिन भक्तों ने देखा वो देखकर उत्साहित हो गए। कल बहुत ही जबरदस्त रथ यात्रा में लोग संकीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अमेजिंग एंथुसियाज्म। वो उत्साह देखने के लिए पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे, या उस तरह का उत्साह आने में कितना समय लग जाएगा। तो इस तरह का उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए संकीर्तन के लिए, हरिनाम के लिए, ग्रंथों के वितरण के लिए. ये हमारा मिशनरी वर्क है. दिस इज अवर मिशन. ये हमारा आंदोलन है. हमारा आंदोलन कमरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम सबको जंग लग जाएगा. हलाल जहर फैल जाएगा हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी चेतना में हलाल जहर फैल जाएगा. इतना विष फैल जाएगा कि उस विष को निकालना मुश्किल हो जाएगा. फिर खत्म हो जाएंगे हम सब, क्योंकि ये हलाल जहर कोई साधारण फिनाइल की बोतल नहीं है. किस चीज के पीने पर या जिसके रहने पर हम मरेंगे नहीं, निश्चित रूप से मरेंगे हम फिर. तो इसलिए हम सबको जीवित अगर रहना है तो दो कार्य हमें निश्चित रूप से करना है सभी सेवाओं के साथ, और वो है संकीर्तन, हरिनाम और साथ में ग्रंथों का वितरण. आप सब भाग लीजिए. ये मत सोचिए कि साल में एक ही बार करेंगे, बाकी समय नहीं कर सकते. हमारे कई और प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट हो सकते हैं आपके, लेकिन इसे कभी मत भूलिएगा. संकीर्तन को कभी मत भूलिए, हरिनाम को कभी मत भूलिए. प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया. एक बार अमेरिका की बात बताते हैं, एक टेम्पल में एक भक्त प्रभुपाद ने कहा कि आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट दी हरिनाम पार्टी हियर. तो वो हरिनाम पार्टी शुरू नहीं करना चाहते थे, और प्रभुपाद जब भी आते थे वो बच के निकल जाते थे. तो उन्होंने कहा कि एक दिन क्या किया कि दूसरे टेम्पल में चले, और दूसरे टेम्पल में गए तो प्रभुपाद एक दिन वहां भी पहुंच गए. दूसरे टेम्पल में गए तो प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद आ रहे हैं, बाप रे बाप. और वो टेम्पल इतना बड़ा नहीं था कि कहीं छुप जाए. तो फिर प्रभुपाद सामने से एंटर कर रहे हैं, गैलरी में एंटर कर रहे हैं, और वो भक्त ने प्रभुपाद को देख लिया. तो दीवार के सहारे चल रहे थे पीठ दिखा के, छुप के एकदम से. प्रभुपाद पीछे से आ रहे हैं, प्रभुपाद समझ गए कौन है. प्रभुपाद ने उनको बुलाया, रूप है आपने हरिनाम पार्टी शुरू किया कि नहीं, आप फिलहाल यहां क्या कर रहे हैं. प्रभुपाद ने कहा प्लीज गो बैक एंड स्टार्ट द हरिनाम पार्टी. प्रभुपाद ने शुरू किया. अभी न्यूयॉर्क में उस समय हरिनाम पार्टी होता था, जिसमें करीब 30 डिवोटीज से जो डेली हरिनाम में जाते थे. महावश्यु महाराज बता रहे थे लंदन में जब उन्होंने ज्वाइन किया था, उन दिनों तक बुक्स भी नहीं थी. 71-72 में महाराज बता रहे थे कि हम रोज सुबह 10 बजे निकलते थे और 1 बजे वापस आते थे. लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और कई ऐसे एरियाज में जाके हरिनाम करते थे. 1 बजे आते थे, 1 घंटे का हमारा क्लास होता था, और 2 बजे दोबारा निकल जाते थे हम लोग हरिनाम के लिए, और शाम को फिर आ जाते, शाम को संध्या आरती से पहले आते थे. तो 5-6 घंटे हरिनाम होता था डेली, और ये अमेरिका में होता था हर जगह पे उन दिनों. यहाँ तक कि हमें बताया था कि जब लॉस एंजलिस टेम्पल में डेली हरिनाम पार्टी भी होता था, 7 ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी थे लॉस एंजलिस टेम्पल की, और उसमें एक हरिनाम पार्टी भी था जिसमें विश्वनंदन स्वामी थे, वयासकी प्रभु थे, राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, हरिनाम पार्टी भी था. अब ये लोग डेली हरिनाम में जाते थे, और संडे के दिन सबके लिए छुट्टी होती थी. संडे के दिन सबके लिए छुट्टी होता था. क्या करते थे भक्त लोग, 6 दिन जो है बहुत सिंपल प्रसाद होता था, और संडे के दिन हैवी फीस बनाते थे. और जो भी गेस्ट आते थे टेम्पल के अंदर, एक एक गेस्ट को कम से कम 4 लोग अटेंड करते थे. ये निरंजन महाराज ने बताया कि जब मैं चौपाटी टेम्पल गया तो मुझे पुराने दिन याद आ गए कि जब हम पहली बार टेम्पल में गए थे तो हमें 4 लोगों ने अटेंड किया था. और उसके बाद संडे के दिन क्या होता था, बहुत बढ़िया फीस बनता था, और लगातार 5-6 घंटे लगातार हरिनाम होता टेम्पल के अंदर, टेम्पल हॉल के अंदर. उस समय प्रभुपाद के टाइम में वहां पे लगभग 400 डिवोटीज थे, उसमें 300 ब्रह्मचारी थे और बाकी गृहस्थ डिवोटीज थे. वो सब मिलके टेम्पल हॉल में हरिनाम होता था, करीब 5-6 घंटे हरिनाम होता था. उसके बाद वो इतने थक जाते थे, और बता रहे थे, एक महाराज बता रहे थे कि वो एक भक्त इतना थक गया कि बस ऑलमोस्ट वो दंडवती करने लगा, मतलब थका हुआ, थके हुए अवस्था में वो एकदम से दंडवत की अवस्था में लेट गया, और उसके बाद वो लेटा ही रहा, उठा ही नहीं. मतलब लगातार 6 घंटे हरिनाम, और उसके बाद इतना तगड़ा फीस्ट होता था, बस वो 6 दिन के लिए काफी था, अगले 6 दिन के लिए. तो इसलिए अमेरिका में कारण ये है, उन दिनों इतने सारे भक्त बने थे. ये हरिनाम इतना पावरफुल है, आप करके देखिए, हरिनाम से जितने लोग जुड़ेंगे और कोई प्रीचिंग से नहीं जुड़ेंगे, ये गारंटी है, ये चैलेंज हमारा. अब केवल हरिनाम पे जोर दीजिए, आप देखिए इतने लोग जुड़ जाएंगे इस टेम्पल से, पावर रखने की जगह नहीं होगी. ये क्या ओपन चैलेंज है हमारा. आप सिर्फ हरिनाम पे जोर दीजिए और साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जोर, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी. मेटीरियली स्पिरिचुअली आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, ये गारंटीड है अभी. लेकिन ऑफकोर्स फील ऑफ फेथ चाहिए. मनसुंदरपुर अभी ट्रैवलिंग संकीर्तन में है, तो वहां पे सेकेंड बैंड में वो लोग कर रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये परसों की बात है. तो अजाने चार घंटे में दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स वर्थ 78,000 रुपीज और खुद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 42,000 रुपीज का बुक्स इन चार घंटे के अंदर और जानते एक ही व्यक्ति ने 28,000 रुपए की बुक्स खरीद लिया उस सड़क पे ही 28,000 रुपए की बुक्स एक व्यक्ति ने खरीदी और जिसको पहली बार मिली लाइफ 350 वहां पे बुक्स निकल गया वहां और भी कई सारे बुक्स निकले विद इन 4 आवर्स तो ये चमत्कार है तो कहने का मतलब है कि हमारे इस प्रोसेस में इतना पावर है लेकिन इसका हम लाभ नहीं उठाते हम सागर मंथन में भाग ही नहीं लेना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हर समय कोई ना और कोई ना कोई आए यहां तो भगवान ने आके सहायता कर दी देवताओं का साथ दे दिया असुरों का साथ दे दिया हमें कुछ अपने आप भी तो कुछ करना पड़ेगा अब जब खुद प्रयास करेंगे तभी तो भगवान आके हमारी सहायता करेंगे सागर मंथन में हमारी सहायता तभी करेंगे भगवान जब हम खुद प्रयास करेंगे जब हम संकीर्तन करेंगे प्रयास करेंगे ग्रंथों का वितरण इसमें मेहनत जब करेंगे तो कृपा इतनी बरसेगी कि आपका जगह नहीं होगी संभालने के लिए कृपा अपने आप फ्लो करेगी और तब आप देखेंगे क्या क्रांति आती है क्या परिवर्तन आते हैं कोई बोलेगा प्रभु जी इतने सारे ग्रंथ बांट दिए कोई भक्त तो नहीं बन रहा है लेकिन एक याद रखिएगा एक बात कोई बने बना बने भक्त निश्चित रूप से हम जरूर भक्त बन जाएंगे और राधिका रमन जी को यही चिंता है कि हम भक्त बन रहे हैं कि नहीं उनको ये चिंता नहीं है कि कितने लोग नहीं जुड़े उनको ये चिंता है कि जो जुड़ गए हैं वो भक्त बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ये उनको ज्यादा चिंता है इसलिए प्रभुपाद ने कहा द हाईएस्ट प्रिंसिपल इज टू सेव वनसेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और कैसे सेव कर सकते हैं हम लोग इसके माध्यम से संकीर्तन के माध्यम से ग्रंथों के वितरण के माध्यम से कोई भक्त बने ना बने कोई किताब ले ना ले हमने क्योंकि प्रयास किया है हम भक्त बन जाएंगे गारंटीड है हम भक्त बन जाएंगे हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे हमारा सागर मंथन हो जाएगा अमृत की वर्षा होगी हरिनाम में रुचि आ जाएगी और क्या चाहिए बताइए और क्या चाहिए हमें इससे ज्यादा इससे क्या बड़ी सफलता है अगर हमने सब कुछ कर लिया और जीवन के अंतकाल में हरिनाम में रुचि नहीं आई नाम अमृत का आस्वादन नहीं कर पाए तो जितना भी किया वो परिपूर्ण नहीं है वो परफेक्शन नहीं है क्योंकि उद्देश्य यह है कि जीवन के अंतकाल में जब वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे जब हाथ पांव इतने ठीक से चलेंगे नहीं जब हम कोई फिजिकल सर्विस नहीं कर पाएंगे उस समय नाम में अगर रुचि आ गई और नहीं आए तो क्या होगा और नाम में रुचि आए तो कितना आनंद लेंगे आप तो उस अवस्था में पहुंचना है हमें कि नाम में रुचि आ जाए इस जीवन में कम से कम नाम में रुचि आ जाए तुम्हारा जीवन सफल हो गया बस हमने जो भक्ति की वो उसकी सफलता में प्राप्त हो गई उसका हमें एक वास्तविक फल प्राप्त हो गया अमृत मिल गया हमें फिर हमें ना कुंभ मेले में जाने की जरूरत है ना उज्जैन जाने की जरूरत है यही पे राधिका रमण मंदिर में हमें अमृत मिल गया वो पर्याप्त है हमारे लिए क्यों हम यहां जाए इतनी दूर जाए वहां पे उस भीड़ में जो है अमृत के लिए हम लड़ रहे हैं वहां पे फालतू है उसके बाद अमृत लेके उसके बाद दिल्ली में आके वही कर रहे हैं सब तो ये है असली अमृत वर्षा इस कौन के मंदिरों में हर क्षण अमृत की वर्षा होनी चाहिए कि नहीं तो इसलिए हम सबको इसके लिए प्रयास करना होगा है ना भले उसमें कोई भी हो असुर भी हो देवता हो हम सबको मिलकर करना है संधि करनी है हमें एक साथ एक दूसरे के साथ संधि करनी है हमें ये है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भाषी कृष्ण भावना अमृत संघ जिससे हम ये नहीं देखते कि कौन देवता है कौन असुर है कौन मरीज है कौन चंडाल है कौन यावन है हम तो ये जानते हैं मंथन कर रहे हैं बस हम मिलजुल के मंथन कर रहे हैं हम ये नहीं देख रहे हैं रशियन है अमेरिकन है चाइनीज है हमें एक साथ मिलकर मंथन करना है बस ये हमारा आने का उद्देश्य है नहीं तो फायदा क्या आने का फिर अगर मंथन ही नहीं कर रहे हम मंथन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये इस बात में विचार करना है हमें कितने साल मंथन किया हमने कितने साल से आप बताइए 5 साल या 6 साल बताइए 2 साल कितनी बार मंथन किया आपने अपना 9 साल 9 साल में हमने कितनी बार मंथन किया अपना कितनी बार मंथन किया अपना वास्तव मंथन किया कि नहीं किया हमने ठीक है तो इस तरह से जब मंथन किया जाता है तो बहुत कुछ निकलता है लेकिन हमें आशा होनी चाहिए अमृत की नाम अमृत हमें प्राप्त हो इसी के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रत्येक दिन हरे कृष्ण कोई प्रश्न है
तो उन्होंने कहा कि मैं समुद्र मंथन करूंगा उनसे अमृत मिलेगा उससे वो अमर हो जाएंगे तो इस समुद्र मंथन के साथ भगवान का और क्या उद्देश्य था इसके अलावा
देखिए महत्वपूर्ण बात तो है, भगवान अपनी लीलाएं करते हैं और लीलाओं के माध्यम से कई लोगों को लाभान्वित करते हैं, और यहाँ पे जो देवताओं की इच्छा थी उस इच्छा को पूरा किया भगवान ने, है ना, क्योंकि ये यथा मां प्रबद्यन्ते ताम सदैव भजामि। देवताओं की इसी चीज की आशा है तो भगवान देवताओं की जो इन इच्छाओं को पूरा करते हैं, भगवान तो सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो देवताओं की इस तरह से देवताओं की इच्छा इस प्रकार से पूरी कर रहे हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण था कि इस मोहिनी अवतार के द्वारा भगवान वास्तव में अमृत प्रदान करना चाहते हैं देवताओं को, यानी कि कहने का अर्थ है कि देवताओं की रक्षा भगवान करना चाहते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात हमने शुरू में बता दिया था कि भागवत के कई विषय, उसमें एक विषय है पोषण, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से ये एक लीला है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की, देवताओं की रक्षा की। और कुछ? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की।